गिनती अध्याय 10। अध्याय 10 में उसको दो चांदी की तुरियां बनाने को कहा गया था, जो लोगों को सभा के लिए जमा होने के आह्वान या फिर युद्ध की चेतावनी देने के लिए प्रयोग की जाती थी। यदि वे एक बार तुरी बजाते तो पूर्व दिशा से लोग लड़ाई के लिए चलते, यदि वे तुरी दो बार बजाते तो दक्षिण ओर के लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ते। इस तरह तुरियां लोगों को निर्देश देने में सहायक होती थी। स्वाभाविक है, जब 5 लाख से अधिक पुरुष और स्त्रियां तथा बच्चे हो और संवाद का कोई साधन ना हो, आपके पास रेडियो ट्रांसिस्टर आदि ना हो और आपको छावनी में अनुशासन रखना हो, यदि पूर्व की तरफ से आक्रमण हो तो पश्चिम की ओर के लोगों को पता भी ना चलेगा कि दूसरी ओर क्या हुआ है। इसलिए युद्ध काल के समय से लेकर आज आधुनिक प्रसारण माध्यम के समय तक तुरही बजाकर सेना को विभिन्न निर्देश दिए जाते हैं। तुरही आज भी हमारी सेनाओं में प्रयोग की जाती है। जब हम हवाई में थे, हम एक सैनिक छावनी में गए जहां तुरही बजाकर सैनिकों को भोजन के लिए भोजनालय में बुलाया जा रहा था। हमने विभिन्न तुरियों की आवाज सुनी। ये बजाया जाता था कि सभा के लिए जमा हो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या दूसरे कारणों के लिए। इस तरह संकेत भिन्न भिन्न होते थे जो तुरियों के बजाने से दर्शाए जाते थे। हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की वापसी पर परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी परमेश्वर की संतान को जमा करने के लिए होगी। कितनी महान बात है! मेरे लिए प्रतीक्षा करना कठिन है। मैं नहीं जानता कि ध्वनि कितनी मधुर होगी, परंतु जिस क्षण वो बजेगी मैं पहचान जाऊंगा। मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर अपनी संतान को सभा के लिए बुला रहा है। वो उन्हें अपने साथ घर में रहने को बुला रहा है। इसलिए हम वास्तव में परमेश्वर की बुलाहट अर्थात कलीसिया की सभा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इसराइली सीनाई के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। गिनती 10:10-12 पर मंडप बना दिया गया, सब चीजें काम करने लगी। इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में उन्हें ले जाना आरंभ किया। बादल उठ गया और वो सीनाय पर्वत के जंगलों से निकलकर प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर पारान नाम जंगल में ठहर गया। लेवी सब अंदर गए, उन्होंने मंडप उखाड़ा और हारून के पुत्रों ने उसे ढाका। ये मानो पूरा अभ्यास था, उन्हें सिखाया गया था कि क्या करना है और अब वे कर रहे थे। जब बादल चलने लगा था और कहातियों ने अपना भार उठाया, गर्शोनी आए और सब मरारी चल पड़े। हम मार्ग पर उत्साहित हैं, परमेश्वर हमें ले चलता है। और मूसा ने अपने ससुर रुएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, सो तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इसराइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। गिनती 10:29-30 पर यह स्थान सीनाई पर्वत के करीब था और वो उनके साथ प्रतिज्ञा किए हुए देश में न जाकर वो अपने घर अपने परिवार में जाना चाहता था। फिर मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहां कहां ढेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे ही मालूम है, तू हमारे लिए आंखों का काम देना। गिनती 10:31 पर। दूसरे शब्दों में ये मनुष्य वास्तव में मरुस्थल का अच्छा ज्ञाता था। वो मरुस्थल में रास्ता निकाल सकता था, वो बता देता था कि पानी कहां मिलेगा। उसके पास मरुस्थल का निपुण ज्ञान था, इसलिए मूसा उसे अपने साथ रखने का इच्छुक था। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसे ही करेंगे। फिर इसराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा ये कहा करता था कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वो ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। गिनती 10:33-36 पर। ये कितनी अच्छी बात है कि जब जब बादल उठता था तब तब मूसा कहता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। और जब जब वो ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, यहोवा, हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। अब परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जाना आरंभ करता है। गिनती की पुस्तक में बहुत से साहसिक कार्य देखने को मिलेंगे। मुझे गिनती की पुस्तक अच्छी लगती है। इसके प्रथम भाग में नामों के कुछ अधिक ही गिनती है, परंतु अब हमें कुछ साहसिक अनुभव देखने को मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अब उन्हें उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जा रहा है जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनके पितरों से की थी। परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी अगुवाई करे, जैसे उसने इसराइल की संतान की अगुवाई की और वो परमेश्वर के आदेश के अनुसार चलते और रुकते थे। इसी तरह परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति संवेदनशील बनाए कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना और रुकना जाने। हम परमेश्वर की संगति में चले, वो आपको आशीष दे और थामे रहे। परमेश्वर अपने मुख का तेज आप पर चमकाए, यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे, यीशु के नाम में, आमीन।